नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं।
जी,
ये विषय है पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक अहम उद्बोधन पर आधारित।
हाँ, जो अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
बिल्कुल, समझे देववाद का मर्म एवं ले उनसे शिक्षण। देववाद, ये शब्द ही अपने आप में गहरा है।
सही कहा।
अक्सर सवाल उठता है कि क्या ईश्वर का कोई रूप है,
या फिर हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, अलग अलग स्वरूप।
तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, देववाद के पीछे का असली मतलब और उससे मिलने वाली सीख को समझेंगे।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव तो शुरुआत में ही मतलब बहुत स्पष्ट कर देते हैं।
क्या कहते हैं वो?
वो कहते हैं कि सृष्टि की जो मूल शक्तियां हैं, जैसे गर्मी सर्दी या प्रेम क्रोध, यहाँ तक कि बिजली, ये सब असल में निराकार है।
निराकार मतलब बिना किसी आकार के।
हाँ, बिना किसी शक्ल या आकार के। जो शक्ति हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, उसका कोई एक निश्चित रूप कैसे हो सकता है ना?
ये बात तो सोचने वाली है, लेकिन फिर हमारे यहाँ इतनी मूर्तियाँ, इतने चित्र देवी देवताओं के।
हाँ, यही सवाल आता है मन में।
हजारों मंदिर हैं, लाखों प्रतिमाएं, तो ये सब क्या है फिर? क्या ये सिर्फ कल्पना है?
नहीं, यहीं पर पूज्य गुरुदेव एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं।
अच्छा।
वो कहते हैं कि ये स्वरूप जो है, ये कवियों और कलाकारों की देन है, पर ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है।
तो फिर क्या है
ये? असल में उच्च आदर्शों के, जीवन के सिद्धांतों के, कर्तव्यों और लक्ष्यों के प्रतीक हैं, सिंबल्स।
प्रतीक, सिंबल्स जैसे?
हाँ, जैसे मान लीजिए हरी झंडी, वो गाड़ी चलाने का इशारा है ना?
हाँ।
उस झंडी में गाड़ी चलाने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है। वैसे ही ये मूर्तियाँ, ये स्वरूप हमें उन ऊंचे आदर्शों की तरफ इशारा करते हैं।
अच्छा, ताकि वो अमूर्त विचार, वो सिद्धांत हमें याद रहें।
बिल्कुल, स्थूल रूप में हमें प्रेरणा दें, याद दिलाएं।
तो ये बात हुई। तो फिर जब कोई अपना इष्ट देव चुनता है, जैसे कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई श्री राम को, कोई कृष्ण को, इसका क्या मतलब हुआ?
देखिए, इष्ट देव का चुनाव पूज्य गुरुदेव के अनुसार वो असल में अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य का चुनाव है।
लक्ष्य का चुनाव कैसे?
जैसे हनुमान जी को इष्ट मानना, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में बल, पुरुषार्थ और निस्वार्थ सेवा के आदर्श को पाना चाहते हैं, उसे अपना लक्ष्य बनाते हैं।
और श्री राम?
श्री राम को इष्ट मानना मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का लक्ष्य रखना। और श्री कृष्ण, वो तो जीवन की पूर्णता, हर पहलू में उत्कृष्टता का प्रतीक है।
अच्छा, तो ये स्वरूप उस आदर्श के एक तरह से मॉडल या प्रेरणा स्रोत हुए।
बिल्कुल सही, प्रेरणा स्रोत।
पूज्य गुरुदेव ने भगवान शंकर के स्वरूप का भी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है ना?
हाँ, बहुत गहरा उदाहरण है। उनके स्वरूप के हर हिस्से में, हर प्रतीक में एक शिक्षण छिपा है।
जैसे?
जैसे उनके मस्तक से गंगा निकल रही है।
हाँ।
वो ज्ञान की गंगा है, ज्ञान की अविरल धारा, जो हमारे मस्तिष्क से भी बहनी चाहिए।
और सिर पर चंद्रमा,
वो मन की शीतलता का, संतुलन का प्रतीक है। मतलब सुख दुख, हर परिस्थिति में शांत रहना, संभाव रखना।
और वो तीसरा नेत्र, लोग अक्सर सिर्फ विनाश से जोड़ते हैं।
हाँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव उसे अलग तरह से समझाते हैं। वो कहते हैं कि तीसरा नेत्र कोई मतलब ऐसी दिखने वाली आंख नहीं है।
तो फिर?
वो विवेक की आंख है, दूरदर्शिता की, ऐसी नजर जो बाहरी रूप के पार जाकर सच को देख सके, भविष्य के परिणामों को समझ सके।
जैसे शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था।
बिल्कुल, उन्होंने वासना के क्षणिक आकर्षण के पार जाकर उसके दूरगामी बुरे परिणाम को देखा अपने विवेक नेत्र से।
और उनका वो शमशान में रहना, मुंडों की माला पहनना, शरीर पर भस्म लगाना, ये सब
मृत्यु के बोध का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाना है। इसलिए जीवन का सही उपयोग करो, अच्छे कामों में उच्च आदर्शों के लिए से लगाओ।
यहाँ पूज्य गुरुदेव एक चेतावनी भी देते हैं ना, कि इन प्रतीकों का गलत मतलब न निकालें।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। वे कहते हैं कि ये सोचना कि शिवलिंग पर सिर्फ पानी चढ़ाने से या हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने से वो खुश होकर हमें तुरंत कुछ दे देंगे।
हाँ, मतलब कोई भौतिक चीज।
जी, कोई भौतिक लाभ। ये सोचना हिंदू धर्म के गहरे दर्शन को, उसकी फिलॉसफी को बिगाड़ना है। ये अज्ञान है।
उद्देश्य तो इंसान को देवता बनाना है, न कि भगवान को इंसान समझकर उनसे लेन देन करना।
बिल्कुल सही कहा आपने, उद्देश्य है इंसान को देवत्व तक उठाना। यही बात गायत्री माता के स्वरूप पर भी लागू होती है।
हाँ, उनका स्वरूप कैसा है?
उनका युवा नारी रूप, वो पवित्रता, उत्कृष्टता, सात्विकता का प्रतीक है। माँ के रूप में उन्हें देखकर आंखों में, मन में शालीनता, शुचिता का भाव जागे।
और उनका वाहन हंस।
हंस प्रतीक है विवेक का, नीरक्षीर विवेक जिसे कहते हैं।
नीरक्षीर विवेक मतलब
दूध और पानी को अलग कर देने की क्षमता, सही और गलत, सार और असार को पहचानने की बुद्धि, पवित्रता और श्रेष्ठता अपनाने का प्रतीक।
तो गायत्री उपासना का लाभ भी उन्हीं को मिलेगा?
हाँ, उन्हीं को मिलेगा जो हंस जैसे गुणों को, यानी विवेक, पवित्रता, सदाचार को अपने जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं।
तो फिर सच्ची भक्ति या उपासना क्या है? सिर्फ पूजा पाठ, कर्म कांड?
पूज्य गुरुदेव के अनुसार सच्ची उपासना देवताओं की चापलूसी करना या उन्हें रिश्वत देना नहीं है।
तो क्या है?
वो है उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना, उनके जैसा बनने की कोशिश करना, लगातार भगवान की मर्जी पर चलना।
हाँ, न कि भगवान को अपनी मर्जी पर चलाने की।
इसी से जुड़ा है गायत्री मंत्र की प्रार्थना भी, धियो यो नः प्रचोदयात्।
निश्चित रूप से उसका अर्थ यही है। हम क्या मांग रहे हैं?
क्या हम कोई भौतिक चीजें नहीं मांग रहे? हम कह रहे हैं ईश्वर हमारी बुद्धि को, धियो मतलब बुद्धि को, सन्मार्ग पर प्रेरित करें, प्रचोदयात्।
सद्बुद्धि मांग रहे हैं।
सद्बुद्धि, क्योंकि अगर सही समझ होगी, विवेक होगा, तो बाकी सब तो व्यक्ति खुद ही ठीक कर लेगा, है ना? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति को सत्यवान बनना होगा, सत्य पर चलने वाला, और गुणों से ब्राह्मण बनना होगा, मतलब श्रेष्ठ आचरण वाला, जन्म से नहीं, तभी वो दैवी कृपा का, उस मार्गदर्शन का असली अधिकारी बनेगा।
तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव के इस उद्बोधन का सार ये है कि देववाद कोई अंधविश्वास नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये प्रतीकों के जरिए जीवन के जो उच्चतम आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको सिखाने का एक बहुत गहरा विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक भी, आध्यात्मिक भी।
हाँ, और ये मूर्तियां या स्वरूप उन आदर्शों की याद दिलाने वाले साधन है, वो खुद लक्ष्य नहीं है। असली उपासना तो है अपने अंदर बदलाव लाना, व्यक्तित्व का परिष्कार करना, उन दैवी गुणों को अपने स्वभाव और व्यवहार में ढालना।
बाहरी कर्मकांड से कहीं ज्यादा जरूरी है अंदर का सुधार।
बिल्कुल, सद्बुद्धि और सदाचार यही कुंजी है। ये पूजा से ज्यादा एक तरह से आत्म सुधार की यात्रा है।
तो अंत में सोचने वाली बात है हमारे श्रोताओं के लिए कि अगर हम देवी देवताओं को सिर्फ इच्छा पूरी करने वाली शक्ति न समझें, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला सिखाने वाले आदर्शों के रूप में, प्रेरणा देने वाले स्रोतों के रूप में देखें, तो हमारी आध्यात्मिकता में और हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है।